હરે કૃષ્ણ. તો આપ લોકો જે ભજન સમા કૃષ્ણ મુરારી શરણ તુમ્હારી પાર કરો નૈયા હમારી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ ભગવાન કો ભૂલ કરકે એક ભૌતિક સંસાર મેં આ ગયા હૈ. ભગવાન કો ભૂલને કા મતલબ ક્યા હૈ કે હમ ખુદ ભગવાન બનના ચાહતે હૈ, ઉનકી સત્તા મેં નહીં રહેના ચાહતે હૈ. હમ ખુદ કંટ્રોલર બનના ચાહતે હૈ, ખુદ ઈશ્વર બનના ચાહતે હૈ, ખુદ ઇન્જોયર બનના ચાહતે હૈ. ઓર ઇસ સંસાર મેં આકર કે કંટ્રોલર બનને કે લિયે, ઈશ્વર બનને કે લિયે, ઇન્જોયર બનને કે લિયે હમ પ્રયાસરત હૈ. इसलिए गली गली कोते कोते में भगवान निकल आ रहे हैं. आप देखते हैं ना कहां कहां. एक दफे भगवान का फोन गया किसी के पास में, ऐसे नकली भगवान है. उनका फोन गया तो जिसके पास गया वो दौड़ा दौड़ा दिया, अरे भाई भगवान का मेरे पास फोन आया, मैं भगवान बोल रहा हूं. कहां कौन सी जगह रहते हैं, अपने अपार्टमेंट अपना बता दिया, भगवान अपार्टमेंट में रहते हैं. ठीक है कि नहीं. तो ये गया, ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये तो मेरा दीपक फ्रेंड है, मेरा क्लास फेलो. बोले भाई तुम भगवान बन गए, तुम क्या बोलते, तुम भगवान बन गए हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम भगवान कहां हो. बोले क्या करूं भाई, मैंने सोचा वैसे तो सफल हो नहीं रहा हूं, मेरा एक चांस ऐसे ही मार देना चाहिए कि भगवान होकर के गिरफ्तारे लोग मेरे ऊपर आने लगेंगे, नया अवतार हो गया तो कुछ दिन कमाई हो जाएगी. तो कलयुग में कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा, ना ही कोई ईमानदारी से जीना चाहेगा, तो भगवान बनने चलते हैं सब लोग. और ऐसे ही वो कैसे भगवान बना पता है, वो गया हुआ था हिमालय पर्वत में. जो हिमालय में गया था, जैसे आपने देखा बद्रीनाथ केदारनाथ है ना, तो वहां दिल्ली के सेठ लोग भी जाते हैं काफी. तो वहां गया हुआ था, इसने क्या किया कि एक जगह पर ध्यान लगाया हुआ था.
तो इसको देख करके
क्या किया, जो व्यापारी लोग थे उसने बोला भाई आप तो बहुत अच्छा ध्यान लगाते हो, आप क्या हो, आप क्या भगवान हो. तो उनके मन में योजना आई व्यापारी लोगों के कि क्यों नहीं इसको भगवान बना दिया जाए, ये भी पैसे कमाने की इच्छा से यहां पर बैठा हुआ है, कि मैं अपनी ध्यान लगाऊंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, मेरी पूजा करने वाले आश्रम करके. तो इन दोनों के बीच में करार मिक्स हो गया. करार का कुछ करवा चार क्षेत्रों ने बोला हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, हमारे पास खूब पैसा है, तुम भगवान बन जाओ. समझे, और ये भगवान बन गया. वो प्रचार करने लगे इसका, क्योंकि तुम्हारी भी कमाई होगी और हमारी भी कमाई होगी. तो कलयुग में ऐसे सदा सभी भगवत चल रही है, नकली भगवान. किसी से पूछो भगवान कहां गए, बोले दांत ठीक करने गए, दांत ठीक करने गए भगवान, दांत में कीड़ा लग गया उनके. तो बर्बाद लोग जो है अपने आप को भगवान है. तो इसलिए ईश्वर की भीड़ लगी हुई है कलयुग में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर बनना चाह रहा है, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से बनना चाह रहा हो, चाहे वो मिनिस्टर के माध्यम से बनना चाह रहा हो, चाहे टीचरों के माध्यम से बनना चाह रहा हो, सब अपने आप को बड़ा घोषित करने में लगे हुए हैं. और उसमें दूसरे के पास ज्यादा होता है तो उनको ईर्ष्या होने लग जाती है, क्योंकि ईर्ष्या तो होगी सभी पास है, सब कॉम्पिटिशन है तुम सब में. इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति झगड़ रहा है, मर रहा है. और पानी महंगा सत्ता कौन बोलते हैं, ये स्थिति हो गई. क्यों, क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं कर रहे लोग, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं. धर्म का मतलब नियम, और जो नियम होते हैं धर्म का मतलब नियम है. क्या नियम, कि सतो गुण का विकास करना, सवेरे जल्दी उठना, सवेरे जल्दी उठ करके स्नान करना, स्नान करने के बाद व्यक्ति को भगवान का दर्शन करना, कि जिन्होंने जीवन दिया है. इनके दर्शन से एक तो हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है, दूसरा हमारी ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है मनुष्य का कर्तव्य वो पूरा होता है, और तीसरा क्या होता है, हमारे जीवन में मंगल होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन बिना भगवान के हम लोग है आशीर्वाद सर्व समस्त जगदीश को सारे आशीर्वादों के कुछ स्रोत, और हम आशीर्वाद देने चलते हैं अधोरी बाबा प्रभोरी बाबा पता नहीं किन किन बाबाओं के सत्ता में मर जाते हैं, जो ना तो हरिनाम जगते हैं ना उनका जीवन शुद्ध होता है, एक नर कंकाल की खोपड़ी लेकर के वो जो है वहां पर संसार में बैठे रहते हैं, सदा उनकी चीज सोचते हैं, इंद्रजाल रख करके दूसरों का अपने विनाश का काम सोचते हैं, और एक दिन खुद का विनाश हो जाता है उनका, वो लोग क्या खुश करेंगे। तो खुशी हो सकती है हमें जब ऐसे सदगुरु हमें प्राप्त हो जाए जो हमें गीता भागवत से उपदेश देते हैं, भगवान की बात को रिपीट करते हैं, वो हमें जगत गुरु से वही बात दी जिन्होंने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति दी। आज कोई प्रभुपाद सोसाइटी नहीं कहता है, तब हरे कृष्ण सोसाइटी कहते हैं, हरे कृष्ण मंदिर, उन्होंने भगवान को लाइज किया, भगवान को आगे किया प्रभुपाद जी ने, समझ रहे अपना नाम नहीं कि मिस्टर बापू मठ, मिस्टर ये जी, मिस्टर वो, मिस्टर जीतन दत्त, नहीं, हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा हरे रामा वाले जा रहे हैं। हमारे मंदिर में नाम है राधा गोविंद मंदिर, राधा पार्थी मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, जगन्नाथ बल्लूर सुभद्रा मंदिर यहाँ हैदराबाद में है, ठीक है कि नहीं, राधा राज बिहारी मंदिर, राधा माधव मंदिर, यहाँ तक की बहुत बात है पेरिस में राधा पेरिसेश्वर, राधा नंदनेश्वर, वेस्ट वर्जिनिया की पहाड़ियों को दिखा तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या रख दिया, बोले ये पहाड़ियां वृंदावन की तरह दिख रही है, न्यू वृंदावन, उस जगह का नाम हो गया न्यू वृंदावन, और बेलजियम में एक जगह है उसका नाम बोलते राधा द्वीप, उसका नाम ही राधा द्वीप पड़ गया, राधा द्वीप में एक शुद्ध भक्त पूरे आगे पूरे विदेश में गया और सारे विदेशी लोगों को कृष्ण भक्त बना करके इम्पोर्ट करके भारत में आया है। किसी की मजा आप अपने बच्चों को बेटी पिता नहीं बना पाते हो, खुद पहनेंगे तब तो पहने वाला दूसरे को क्या पहनाएंगे बताइए हम। तो प्रभुपाद जी अमेरिकन लोगों को धोती कुर्ता पहना के ले आए, शायद आपने अपने दादाजी और पिताजी को देखा होगा, जैसे सर जी धोती नहीं पहनते अक्सर, तो उनका बेटा भी देखिए नीरज जी है कि नहीं, पवन जी, पवन नाम है आपका ना, दोनों नाम है, मेरे पास नीरज दिखा है आपने, नीरज गुप्ता है, तो जो भी वो पवन या नीरज जी जो भी है आपकी आपकी बात कर रहा हूँ, तो ये भावना है हमारी भारतीय परंपरा देखिए, हम लोग धोती कुर्ता पहने हैं, धोती कुर्ता से व्यक्ति की अलग पहचान होती है, हमारे ठाकुर जी पीताम्बर वस्त्र धारी जी की धोती पहन लेती है, भगवान ने जो जीन्स पहन रखी यही बोल रही है, पाताल लोग की ड्रेस है जो जीन्स पहनकर जीन्स बोलते हैं, जीन्स मतलब कीटाणु, तो कीटाणुओं से ही बनती है हमारी जीन्स, इसीलिए धोई नहीं जाती है, बस जितनी भर खोल होगी उतनी वजह समझी पर गंध लगी रहेगी उसको, बसो गंध धो नहीं नहाओ नहीं बचोगे सब एकदम, हाँ अब वही मतलब अच्छी खासी पैंट है उसको फाड़ फोड़ करके वो फैशन कर जाए, पीछे से ताला लगा देते हैं जहां पर फटा हुआ है बोले फैशन है, जैसे ये स्टाइल हमारे स्टाइल है, उसके छिपा जैसे कुत्ते ने फाड़ दी हो कुकुर ने जिसने धारा लगा दिया हो, जैसे फटी हुई हो कच्चा धारी घूमते रहते हो सोचते मन मन में मॉडर्न है, वो अपने मन में मॉडर्न है, बाकी कोई खुश नहीं उसको लेकर भूत लग रहा है पूरा, आप अमेरिका कहीं बाहर चले जाओगे तो लोगों का इतना बेहंगा घर देख करके आप बोलोगे बढ़िया सुअर लग रहा है बोलोगे, सही है नेक्स्ट टाइम बिकम ऑल्सो सुअर, सुअर ही बनेगा हमारे जन्म में, बाल खड़े करे आकर वैसे शुरू हुए आकर बाल खड़े करे सुअर स्टाइल टिग स्टाइल होते टिग स्टाइल धन्य है बिकॉज मेंटेलिटी ऑल्सो टिग, जैसे आज पड़ोसी बोल रहे थे कि किसी को बोलो आप पशु बन जाएंगे तो लोग बोलते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, हम भी हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा पशु बन जाएंगे, अच्छा बात है, पर दूसरी बात बोल रहे थे कि आजकल कुत्तों की आवाज निकाल रहे हैं विदेशों में अलग अलग जानवर का, तो क्योंकि उनका विचार पशु की तरह है, उनके पशु से दोस्ती होगी, इंसानों के विचार होते तो इंसानों से दोस्ती होगी ना, तो दोनों पार्टी ने ऐसे पशु लोगों को इंसान बनाए हैं जो गाय का मांस खा सके कुछ भी रात सिंगापुर चले जाओ फ्लावर मक्खियां रखी होती, मक्खी मक्खियों को ढूंढते हैं, गदर 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 मक्खी खाई, मक्खियां प्लेट बन गई, मक्खी खाई गई, कोई भी चीज वहां बची नहीं, जो मिलेगा उसको फेंक खाए, सब कुछ साफ करके सारी चीजें खाओ, वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको, वहां खाना दुर्बल हो जाएगा आपको, भक्ति करना दुर्बल हो जाएगा। तो भारत देश हमारा फिर भी अभी तिरालीस शुरू हुआ है कम से कम, अभी तिरालीस शुरू हुआ है काम से दिन, मान की शुरू हो गया दिए की चीजें आ गई थी, लेकिन अभी भी भारत देश जो है यहाँ अभी भी एक मीडिया उछाल रहा है, अभी भी 70% लोग अच्छे भावना वाले हैं, बता रहा हूँ आपको 70% लोग अभी भी मर्यादित, उनको पिछले संस्कार अपने सब कुछ पता है, अगर नहीं होते तो आप इतने लोग यहाँ कैसे बैठे होते बताओ, समझे आपको थोड़ा सा धन पता चले तो आप इस मंदिर से जुड़ गए कि भैया अच्छी संस्था है। तो लोगों में जो धार्मिक भावना है तभी तो भक्त बन गए हैं, तो ऐसा नहीं कि सब प्रयोग आ गया, 70% लोग आए जो अच्छे हैं, और 30% लोग जो बुराई है, क्योंकि मीडिया बुराई को ही लॉन्च कर रहा है बार बार, वो इस हीरो का कुत्ता मर गया, उसको बार बार छह लोग रिपीट करेंगे, कुत्ता मर गया कुत्ता मर गया, इतने लोगों ने सत्संग सुना उसको कोई रिपीट करने वाला नहीं है, इतने लोगों ने, तो लोगों के माइंड में हो गया कि वो कलयुग आ गया, बहुत ज्यादा विकास, इतना कलयुग नहीं आया है, हम लोगों ने जीवों को बचाना है, कृष्ण भक्ति देकर के, गीता भागवत के प्रचार करके, और ये हरिनाम देकर खुद जपना है। आप में से कितने लोग हैं जो थोड़ा मारा जप करते हैं, हाथ खड़ा करिए, 6-7 लोग हैं, और कितने लोग हैं जो माला करते ही नहीं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, हमको ये समस्या नहीं होगी, 1-2-3-4-5-6-7 लोग हैं जो माला नहीं करते हैं, आप लोगों से निवेदन है आज सत्संग सुनने के बाद एक प्रण कीजिएगा कि आज से हम ही भगवान का एक माला 8 मिनट भगवान को देंगे, एक माला में 8 मिनट लगते हैं, दो माला में 16 मिनट लगेंगे, ठीक है, क्योंकि माला का मतलब है अब दुनिया की माला, तो अगर भगवान का माला नहीं करेंगे तो दुनिया का माला करेंगे है नहीं, दुनिया का माला तो खेल गए हम सब लोग, दुनिया के ही बने हुए हैं, और दुनिया देती बड़ा दिलासा तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल गोविंद बोल गोविंद बोल, समझे दुनिया बहुत दिलासा देती है, तो दुनिया से ना तो ये हमारा ये दुनिया बन पाएगी ना हम इससे बन पाएंगे, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है और वो भी खुश नहीं हमारी सेवा से और हम भी उसकी सेवा करके खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट कार्य गलत है, जब तक मूल की जब पेड़ की सेवा करनी है तो जड़ पर पानी डालो तब सेवा होगी ना, नहीं आप लोगों में तो पत्तियों में डालूंगी पत्तों में डालूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा क्या होगा बताइए, कोई बात नहीं, थोड़ी बैठ जाइए बैठ जाइए, बिल्कुल जगह कम है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, तो पेड़ की सेवा करनी है तो कहाँ पानी डालना पड़ेगा बताइए सरगम, क्यों, क्योंकि जड़ ही मूल है, जड़ की सेवा कर दी तो पत्ते टहनियों की सेवा अपने आप बोलिए जाना है आपको, बैठिए बैठिए सुनिए, ठीक है, तो इसी को बताया था कर्मी में यद फलम नास्ति तत्सा में योगी ने समाधिना तद फलम लभते सम्यक केशव कीर्तन, भारत के महात्म्य का श्लोक है कि जो फल बड़ी बड़ी तपस्या बड़े बड़े योग बड़े बड़े ध्यान लगाने से व्रत करने से यज्ञ करने से पूजा करने से या समाधि लगाने से जो फल नहीं मिलता है, कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने मात्र से बैठे बैठे पालती मारते मारते मिल जाएगा आपको, सर नीचे पांव पर करने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संग में आके बैठना है, ये बैठने मात्र से आप धनवान हो जाओगे, आप कृष्ण भक्ति में अमीर हो जाओगे, जितना आप सत्संग में बैठते हैं आपका भगवान से प्रेम उतना बढ़ने लगता है, क्योंकि जिसके बारे में सुनोगे उसी से प्रेम डेवलप होगा, बचपन से ही क्रिकेट के बारे में आपने उसे क्रिकेट देखा नहीं है, मेरे तो याद है जब हम पहाड़ से आए थे गांव से, तो जब पहली जगह हरिद्वार में आए हम तो वहां एक जगह भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि हमें टीवी भी नहीं दिखाता क्योंकि वहां बिजली नहीं होती थी, टीवी कहां से होगा। जब देखा हमने एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ में क्या हुआ, वो सर्जन का चल रहा था शायद, तो सब बाहर से देखते ना पान के दुकान के बाहर से, वो तो वहां शायद थक्का पड़ा चौका पड़ा, मेरे को पता नहीं, सब हंस रहे थे एकदम। तो मेरे को समझ ही में ना आया कुछ, तो मैंने सोचा सब हंस रहे हैं, अगर मैं नहीं हंसूंगा तो पागल हो जाएंगे, तो मैं भी ऐसा कर दिया, कोई पता कुछ नहीं है, ऐसा हंस दिया, ठीक है, पता कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद पता नहीं शायद कोई भूल आउट हुआ होगा, तो सब क्यों है, सब मेहनत हो गए। तो मैंने सोचा भाई अभी तो हंसे की क्या हो गया, तो मैंने कहा मेरे को बेवकूफ समझेगा, मैंने भी अपना मौका दिया, ओ पता कुछ नहीं है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को सामने देखते हो अपने हाथ खड़ा करने, दो तीन लोग, ठीक है। तो टीवी में देख देख करके, अब सामने भी देखा होगा, एक भरा था कौन सा, उससे नहीं भरे होंगे, टीवी में देख देख करके, देख देख करके, देख देख करके, देख देख करके उसकी पिक्चर आई नहीं, उससे पहले पिक्चर इतना प्रेम डेवलप कर लिया है उनको देख देख के, केवल टीवी में अभी साक्षात देखा भी नहीं है, समझ रहे ना। तो क्या भगवान के बारे में सुन सुन के, सुन सुन के उनसे प्रेम नहीं हो जाएगा, और भगवान के लिए जो हमारे हृदय में स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक हमारे हृदय में जो है, क्योंकि हम उनके ही हैं, उनके ही प्रेम है, केवल वो माया के संस्पर्क में, माया के संग करने के कारण हम उनको भूल गए हैं। जो ही सत्संग शुरू होता है तभी तो हमें भगवान की याद आना शुरू हो जाता है, मैं कौन हूं, मेरा उनके संग संबंध क्या है। तो सत्संग जिन सत्संग विवेचना हुई राम कृपा दिन सुलभ न कोई, सत्संग सुने बिना विवेक आपका जागेगा नहीं, बुद्धि खुलेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि जीवन किसके मिला है। नहीं तो साधारणतः आप देखिए किसी से भी पूछिए, बड़ा खाओ पियो है, करो कल किसने देना है, बस बजा का गाड़ी हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, अपना बंगला हो जाए, और क्या है, बस यही जीवन लगते समझे, और क्या इंजीनियर डॉक्टर आई एस अफसर बन जाओ, और क्या है। और माता पिता भी इसी के लिए प्रसन्न करते हैं, बेटा आई एस अफसर बन जाओ, मेरी इच्छा है तुझ जन्म बन बेटा, कौन माता पिता है ये बोलते हैं, मेरी इच्छा है बेटा इस जन्म में तू भगवान को पाए, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, फिर खुद भक्त होंगे तब तो बनाएंगे ना, जब खुद ही असुर है तो असुर ही बनाएंगे, कैसे बम फोड़ना बेटा, कैसे इकट्ठे को हजार लोगों को मारना है, वो सिखाएंगे। तो कभी जो है इसी प्रकार से, जब खुद भक्त नहीं है तो दूसरों को भक्त कैसे बनाएंगे। तो लेकिन हम एक सत्संग के माध्यम से, भगवान का भगवदगीता भागवत के माध्यम से, और भक्तों के संग के माध्यम से अपने सुप्त प्रेम को, जो सोया हुआ है प्रेम हमारा, उसको जागृत कर सकते हैं। ये सत्संग अलर्ट व्यू है, जैसे कुकुर होगा ना कुत्ता, आपने देखा होगा जब शंख बजाओगे तो कुत्ता जब तक शंख बजेगी तब तक वो ऐसे मुंह खोल लगता है, उसको कहते हैं पिछला जन्म याद आता है कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां की थी, मैंने सारा याद आता है, रोता है वो बड़ी तेजी से उतनी दिन तक, जो भी शंख बंद कर दो तो फिर भूल जाता है, फिर मैं पता कहाँ है वो, फिर भावने लगता है गली मैं इस कभी का दादा हूँ, तू कैसे आया, दूसरे कुत्ते को बोलता है, समझ ना, वो कहते मनुष्य भी है, वी आर अमेरिकन, वी आर इंडियन, तुम कैसे आ गए अमेरिका में हमारे, समझे, समझ कुत्ते भी नहीं होगी, बड़े संसार में सब लड़ रहे हैं। तो जब सत्संग सुनते हैं हम, तो हमें भी जैसे कुकुर को याद आता है अपना, तो भक्तों को भी, जो भक्त हैं जिनके हृदय में भक्ति है, उनको भी याद आता है, हे प्रभु इतना समय कहाँ मैंने गवा दिया अपना। तो सत्संग ही है जो वास्तव में भगवान को याद, भगवान की याद दिलाता है। और ये साधु संघ इस वर्ष पूरे सब भक्ति, केवल साधु संघ है जो भक्ति का जन्म स्थान है, इसीलिए श्रवण कीर्तन सबसे जरूरी है। जो सुन नहीं सकता है वो अच्छा बोल नहीं सकता है। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया सुनते थे, उनके गुरु महाराज कहते थे कि मेरे सन्यासी शिष्य भी कभी कभी उठ के चले जाते हैं, उनकी सुनने में रुचि नहीं है, ये लड़का गृहस्थ है लेकिन बहुत अच्छा सुनता है, ये बहुत अच्छा बोलेगा, और प्रभुपाद कितना अच्छा बोले, देखिए अमेरिका लोगों को भक्त बना दिए, ऑस्ट्रेलिया लोगों को भक्त बना दिए, लंदन वाले लोगों को भक्त बना, वेस्टर्निज के वो अक्सी सबको भक्त बनाएंगे, सबको प्रभुपाद की भक्त बन रहे लोग कहां कहां से दूर दूर से, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। उनका एक ही मोटिव था, जब जो ही प्रभुपाद जी के चरण अमेरिका में पड़े तो अमेरिका की भूमि क्या हो गई, धन्य हो गई, पवित्र हो गई, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। भगवान के तीर्थन की कुर्बानी तीर्थन की, एक शुद्ध भक्त जब किसी जगह पर अपनी चरण डालता है तो जगह तीर्थ बन जाती है, तो पूरा धाम हो जाता है। और फिर राधा कृष्ण को स्थापित करके, वहीं पर अगर कोई करारी करारी होता तो बोलता है कठिनो खोल देता तो कितना अच्छा लगता है। करारी की पहाड़ी को देखते बोलेगा हाँ कितना बढ़िया टूरिस्ट स्थल, यहाँ होटल खोल लो, होटल खुलेंगे बहुत बढ़िया। समझे, कोई जुआरी सोचेगा कठिनो खोल दो, कोई सोचेगा कुछ खोल दो इसको, लेकिन भक्त क्या सोच रहा है, वहां पर उन्होंने पैलेस ऑफ गोल्डन स्वर्ण मंदिर बना दिया था। पैलेस ऑफ गोल्डन बोलते हैं उनको, राधा वृंदावन चंद्र वहां का ठाकुर जी का नाम है, राधा वृंदावन चंद्र, वृंदावन के चंद्र। क्या लिखे, भक्त का विजन अमेरिका में जाके, हम लोग जाएंगे अमेरिका से, वहां पता चला कि धोती कुर्ता खुल के आधा पैंट पहन, ठीक है झाड़ू बजाएगा तो झाड़ू बजाए। कितने लोग ऐसे भक्त देखे हैं जिनका उद्देश्य ठीक नहीं था, वो इसके भक्त बने थे कि तकलीफ कर लिया, एक महीने के अंदर थोड़ा अंग्रेज भक्तों से पहचान लगाई, फिर वहां चले गए, वहां बाहर जा रहे थे अपना झाड़ू लगा रहे हैं, किसी के बर्तन धो रहे हैं। और यहाँ जब भक्ति में एक भक्त ने कह दिया उनको कि तुम जिधर थाली ले जाओगे, है मैं थाली नहीं लूंगा, इसलिए यहाँ आया हूँ, और वहां पूरे परिवार के बर्तन धोया छत कर दो, तो वहां उसको किसी जरूर मिलेगी, उसके दोनों वो मंजूर है। तो संसार, हम संसार के लोगों के गुलाम हैं, डे नाइट सर्विस करनी पड़े 10,000 के लिए हम मालिक के गुलाम, हम और मालिक ने प्रभु जी सत्संग बोल रहे हैं, मालिक ने कह रखा मेरे को 10,000 में बेच दिया, मेरे को रात को सर्विस कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग बोलने की भाई मंगल आरती आ जाओ तो नानी आ जाएगी, आपको क्या पता प्रभु जी हम जो ठीक करें, कितनी मुश्किल होती है हमारी जिंदगी में। भक्त बोलता है तेरी मुश्किल को देख के ही कोई मैं मंगल जीवन शुरू कर रहा हूँ मेरा, अभी अगर शनि की सारी जाति कोई बोल दे तो अघोरी बाबा बोल देगी 3 बजे से मेरे यहाँ चक्कर काटते रहे तो 36 बजे रह जाएगा वहां, और जहां से पूरा पूरा मेरा जीवन ठीक हो रहा है वहां के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, साला की विकेट में रखते हैं। ये बद्ध जीव का जिन्हें सबसे बड़ा रोग है, तो बोलिए हरे कृष्णा, और बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण आनंद की जय। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, के तब माधव बोल, हरि 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 बोल, के तब माधव बोल, हरि 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 बोल, भारी बात कर
Thank you.
श्रीमती राधा रानी की भूमि वृंदावन धाम की ये धर्म भगवान संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री हरिनाम संकीर्तन देने वाले श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की गौर भक्त वृंद की आज के आनंद की। तो भगवान का नाम इस कलयुग में धर्म है, कलि कार्य में धर्म, कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। तो कलयुग का धर्म क्या है बोलिए? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब होता है स्वधर्म, हमारा निज का धर्म। प्रत्येक जीव किसी ना किसी का नाम बोल रहा है, किसी ना किसी का गुणगान कर रहा है। अगर भगवान का नहीं करोगे तो फिर क्रिकेटरों का और क्रिकेटरों का करना पड़ेगा, मान के करो, क्योंकि जिसके बारे में देखोगे उसका ही संग करना पड़ेगा, उसी का रंग चलेगा आपने। और नाटक देखोगे ठीक है ना, टीवी खोल करके सारे प्रकार के नाटक देख रहे हैं और नाटक से जिंदगी नाटक हो जाती है। सास का बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, सही है? जितने भी नाटक हैं उसने हमारा जीवन नाटक बना दिया है। अच्छा खासा गृहस्थी जीवन चल रहा है, पता चला कहीं से नया रिश्ता दिखा रही है उसने, उसका पहले कहां का चक्कर था ठीक है कि नहीं, पुराना चक्कर कहां से आया, नया चक्कर कहां से आ गया, तो सारा जीवन बेकार करके रख देंगे। तो नाटकों को न देख करके अच्छी सीढ़ी चलाइए, जिसमें सती जी का चरित्र हो। अगर स्त्रियां सती जी का चरित्र देख लें और जिनका द्रौपदी जी का चरित्र देख लें, मंदोदरी का चरित्र देख लें, सीता जी का चरित्र देख लें, समझे देवभूति जी का चरित्र कैसे अपने पति को देवभूति जी सेवा कर रही, पति की एकदम दुर्बल हो गई, अपना उन्होंने सुंदरता भी छोड़ दी श्रृंगार, केवल पति को भक्ति में उनके भक्ति के कार्यों के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है, इतना सहज प्रेम देखिए। कोई लड़ाई जी नहीं उनकी प्रेम हुआ था, उनको बताया था बस इस प्रकार से तुमको इस ढंग से पति मिलेंगे, तो उन्होंने जो है इस प्रकार से सेवा करी है। तो जब इस प्रकार से स्त्रियां चरित्र देखेंगी तो उनका चरित्र चरित्रवान हो जाएगा, और जब हमारे पास चरित्र हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमारे जीवन में सुख शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? सारा संसार पाप कर्मों के कारण गर्त में जा रहा है। हम तो दुखी क्यों हैं, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? क्योंकि हम हर चीज इलीगल करना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं, जो मेरे मन आए सोई में करना, और इससे सारा संसार क्या है, सब फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सारा संसार दुखी क्यों है? बच्चा अपने मन से चलना चाहता, पिता अपने मन से, वो अपने पिता का कहना नहीं मान रहा, ये अपने पिता का कहना नहीं मान रहा है, तो किसका कहना मान रहे हैं? ये अल्प विद्या भयंकरी उतरना नॉवल फिर भी कर लिया ठीक है नहीं? और जिन स्कूलों में सिखाया जाता है आजकल, स्कूलों में क्या सीखते हैं, जब प्रेयर गोल करेंगे तो वहां से पिक्चर देखने जाते हैं, ठीक है, वहीं पर सिगरेट लगाते हैं। यार तू तलाक तो एकदम पानी की तरह भाषा होगी, यार मैं सच बता रहा, मेरे को याद है एक दफे हमने गलती से यार कह बैठे किसी को, वो हमसे बड़े थे उम्र में, तो प्रभु जी ऐसी क्लास लगी कि वो दिन है आज का दिन है, दोबारा तुमने यार कहा कैसे, मैं तुम्हारा यार रखता हूं, आज तुम कहो यार, लड़कियां बोल रही लड़कों को यार, दूसरे की पत्नी को बोले यार नहीं, अभी इतना कमल वर्ड बना दिया है तुझे, मत यार यार कह कैसे दिया तुमने यार, तुम्हारा याराना है क्या इसके संग, तुम इसके यार रखते हो, फिर पति बोल सकता है इसको यार, क्या कह रहे हैं? बच्चों की भाषा देखो, या पिक्चर की भाषा देखो, दो लड़के बात कर रहे हो ना, आप हे भगवान मुंह में भी हाथ रखोगे और कर दूंगा, विकट है इतना टिंगू, तू मेरे को जानता नहीं, अभी बिल्कुल फिल्मी भाषा, पता नहीं क्या कर देगा उन्हें मालूम, एक थप्पड़ भर दो वही गिर पड़ेगा। झूठा अहंकार की लिमिट क्रॉस हो गई है। और माता पिता सिखाते हैं बच्चों को, पहले माता पिता पता क्या करते थे, बच्चा निकलता था घर से और बोलता था मैं जा रहा हूँ पापा मैं जाऊँ, हाँ जाओ, और वो निकला नहीं, पीछे से पापा भी निकले, देखो आज कहाँ जा रहा है, दूर चेक करते थे जहाँ कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, रात को चेक करते थे, दिन में चेक करते थे कहाँ गया, कहीं गलत संको नहीं किया, कैसे मन नहीं लग रहा तेरा माला में, मेरा माला में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, किसका अन्न खा के आया तू, कहाँ गलत संग किया तूने, कोई गलत फोटो तो नहीं देखी, गलत चित्र तो नहीं देखा, ऐसी कैसे हो सकता है मन ना लगे, अरे तुम्हारा मन और तुम्हारे गलत में नहीं, जरूर नहीं गड़बड़ हुई है कि नहीं, तो ये शिक्षा होती थी, एक एक चीज पर 20-30 मिनट आदमी बोलता था तो आदमी को सोच करके मजबूर हो जाता था, भैया मैं एक भी एक गलत काम करूंगा तो मुझे आधा घंटा सुनना पड़ेगा, बल्कि सुनना ही नहीं मार भी खानी पड़ सकती है, और हो सकता है पूरी रात घर के बाहर रहना पड़ेगा, निकाल देते थे बाहर जाओ, आजकल तो मैं बाहर जाओगे ठीक है मैं बाहर ही रहूंगा, रहो बाहर, बाहर ही रहो तुम, जाओ मत आओ घर, खाएगा संसार की गलन और डे ना तुम वापस आएगा, तब तक सुधरेगा व्यक्ति, जब सुधारने वाला व्यक्ति, क्योंकि भाई होना चाहिए, भाई में प्रीत ना हो, शुरू में कर्तव्य का पता नहीं रहता है कि प्रेम से हम काम कर लेंगे, भाई से काम किए जाते हैं, भाई होना चाहिए, बिना भाई से भयम द्वितीय अभिनिवेश, भाई के बिना हम सुधर नहीं सकते हैं, याद रखना भाई होना चाहिए, हमें किसी न किसी का भाई होना चाहिए, इनको सब फिर इनके निर्लज्ज हो जाएंगे और सब उनके काम कर, जैसे आज निर्लज्ज हो चुके हैं, पिता प्रसन्न है, देवी बनकर माता बन गई, सभ्यता का नाम नहीं, पूजा पाठ का नाम नहीं, आज ही रात सिनेमा देखकर आएंगे तो कैसे उठेंगे तड़के, लड़के कैसे भड़के, चाकू छुरा मारना सीखे, गैर की विद्या पढ़ के पिक्चर देख के, अपना दादा जी का नाम उनसे पूछो नहीं सुना सकते हैं, याद नहीं क्योंकि कभी पूछा ही नहीं, पर देवानंद और दिलीप कुमार की पीढ़ी सुनाई पढ़ के, 11 प्लेयरों के नाम ऐसे बताएंगे पानी की तरह, लेकिन उनसे बोलो 10 अवतारों के नाम बता दो, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको 10 अवतारों के नाम याद है, 10 अवतार 5-7 लोग होंगे, तो 10 अवतारों के नाम हमें याद नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट की टीम का इतना बढ़िया से कम वाइज बता देंगे नाम हम उसको बता दें, वो तो मेरे ख्याल से जो इनके BCCL वाले हैं उनको पता नहीं होगा, उतना बढ़िया हम बता देंगे ऐसे करके, क्योंकि रुचि उसमें है, स्वाभाविक रुचि कभी उम्र लोगों की जो है ये अनावश्यक गेमों में, अनावश्यक चीजों में, और वो क्रिकेट देखने के लिए पूरा इतना बड़ा ग्राउंड सरकार उसके लिए बनाती है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है और सारे बंदर बंदरिया उसको देख रहे होते, हाँ सब बंदर जैसे होते, मंदिर आने के लिए सत्संग आने के लिए बोलो समय नहीं है, टाइम नहीं है, एक बॉल में जो है इतने लोगों को नचा रखा है, 11 लोगों को, 11 लोगों के लाखों लोग वहां पर देखने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए मीडिया छाया हुआ है, सारा पता नहीं कवरेज दिया एक बॉल के लिए 11 प्लेयर लगे हुए, और एक क्या होता है पोलो होता है, पोलो क्या होता है ऐसे गेंद को खेल में डालते हैं, तो हम लोग अक्सर बोलते थे भैया हम तो बचपन में ये क्या होते हैं कंचे खेल के उसको खेत में डाल देते थे, ऐसे ही कौन सा बड़ा काम कर दिया, उसके लिए लाइन लगी होती सुनाना ये गाड़ी वो गाड़ी पोलो देखने जा रहे हैं, एक गेंद को थोड़े से खेत में डालने के लिए कितनी भीड़ लगी थी, ये काम तो बस पूरा नहीं करते थे तुम गंजे खेल के सीधे बोल सीधा उसको जाते थे, सोचिए जरा उसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, ये है माया, माया सब माया से पूरा ही है, तो ऐसे लोगों से आप कैसे आशा रख सकते हो कि आपको सुख पहुंचाएंगे, नहीं सुखी पहुंचाएंगे, सब फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए कृपा करके जो भजन आपने सुना है इसका राम नाम की महिमा थी कि कैसे हमें हर स्थिति में तबरी से तड़ गई अहिल्या भी तड़ गई प्रभु का नाम लेकर के, सदन कसाई जो कसाई था और बांट आपको पता बांट क्या रखता था, वो सालिग्राम किला उसको पता ही नहीं था, सालिग्राम जो है किले का बांट में सालिग्राम रखा हुआ है, और इधर भी पूरे भगवान इधर भी आए नारद मुनि उसको बोले अरे मूर्ख क्या कर रहा है तू,
जो होश आया सबसे छोड़ दिया और शालिग्राम में से भगवान प्रकट हो गए उसको, बोले तेरी भक्ति को, क्योंकि पता नहीं था, पता चलते ही उसने पाप छोड़ दिया उनका नाम लेते ही, और नाम लेने से बड़े से बड़े पापी रत्नाकर डांकू गांधी की जी रत्नाकर डांकू से उनका हृदय पिघल करके भक्त बन गए। मजरारी एक एक जीव को तय करके क्या करता था, पूरा नहीं मारता था, आधा छटपटाता था वो जीव, तो उसको बड़ा मजा आता था। एक दफे देखा नारायण मुनि ने एक छोटा प्राणी मरा हुआ था, आगे चिड़िया मरी हुई थी, आगे बड़ा बकरी मरी हुई थी, आगे भैंसा मरा हुआ था, लेकिन मरा नहीं, वो छटपटा रहे थे। आगे गया तो मृगराड़ी दूसरे पशुओं को मारने जा रहा था, तो नारायण मुनि ने बोला, अरे मूर्ख प्राणी तू ऐसे क्यों मारता है इनको, अगर मारना ही था तो पूरा ही मार दे। बोले नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है वो छटपटाते। सोचो जरा कितना हृदय दया से विहीन था। तो लेकिन नारद मुनि ने बोला किसके लिए करता है, तो बोले पापी पेट के लिए करता हूँ। तो जब नारद मुनि ने बोला कि ये पेट तो वैसे भी भर सकता है, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी भर रहा है, तो बोलते नहीं हमारा पुत्र ही धंधा है। अच्छा ठीक है, तो फिर किसके लिए कर रहा है ये, बोले तुम्हें पत्नी और बच्चों के लिए, तो पूछ के आओ पत्नी और बच्चे तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे। गया पूछने के लिए, नारद जी को बांध के गया, कहीं भागना जाओ आप, नारद जी को बांध के गया और पूछने गया पत्नी से कि मैं तुम्हारे लिए इतना पाप करता हूँ, क्या मेरे पाप में भागीदार बनेगी। पत्नी बोलती है मेरे पाप में तुम्हारी चीज अभी करा रहे, अब तुम जैसे तैसे पालो, जो तुम्हारा फर्ज है मैं भी तुम्हारे पाप में भागीदार बनू। बड़ा माथा ठंडा है तुम, और इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। बेटे से बोला, बेटा बोलता पिताजी तदा के उनकी अभी पाप नहीं करते थे, मैं भी तुम्हारा पाप लू। बाहर बोले माथा छनक गया, सीधे नारद मुनि के पास गए, चरणों पर के बोले नारद मुनि आप ठीक कहते थे बिल्कुल। वो तो ऐसा उत्तर दे रहे, नारद मुनि बोलते चिंता क्यों करता है, आज से तो भरे उधर एक महीने बाद आऊंगा तुम्हारे पास में। देख वो बोलता है मेरा भोजन कैसे हो रहा, बोलते तो भोजन की चिंता क्यों करते हैं, अगर ये नाम जब के भोजन नहीं मिलेगा तो एक महीने बाद छोड़ देना। तो ये नाम जपने लगा, मजराई सब पशुओं को मार दे रहा, एक जगह इसने नदी के किनारे स्नान किया, बैठ के धुनी जमा दी, खबर फैलने लगी भैया मृगराणी नाम का शिकारी जो है भक्त बन गया है, अरे देखो देखो सबको मारना छोड़कर के भक्त बन गया, माला जो पड़ा है सबको पता चल गया, राजा तक कोई पता चल गया, लोग आने लगे, कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई क्या ला रहा है पता है, अन्न ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, किसी ने झोपड़ी बना दी, राजा जी तो बड़ा महल बनाओ सत्संग हो रहा हूँ यहाँ पर, अब तो प्रवचन दे रहा भैया, लंगर दूसरों को खिला रहा है, और जैसे नाथ द्वारा होते नाथ द्वारा में घी के कुंड है, ऐसे लड़ा हुआ है ताता बिल्कुल। एक महीने बाद नारद मुनि आए तो ये दूर से देखा, नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि के पास जाने लगा, तो इनके देख देख के चल रहा है, बड़े धीरे धीरे, कहीं चींटी होती थी तो उसको ऐसे कर रहा है, किनारे कर रहा है, वही व्यक्ति में आधा तोड़ के मजा लेता था, अब वो चींटी को मारने लगी जन क्या हुआ, खुद रास्ते से हटा रहे हैं धीरे धीरे जा रहे हैं। नारद मुनि ने प्रश्न किया, क्यों खाने के लिए नहीं जा रहे, परम आनंद यार, तो दूसरों को खिला रहा हूं, कौन खाए कौन खाए, हम मूर्ख प्राणी, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, अन्न क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, अनाज फल फूल ये सब अच्छे क्यों नहीं हो रहे, हम प्रकृति में पापी हो रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम मांस ही मांस खा रहे हैं, बिना भोग लगाए खा रहे हैं, सवेरे उठ करके कोई सजदा प्रणाम नहीं भगवान को, ठीक है ना, रात दिन तीन चरण खुले हुए हैं, दुनिया में पैंखा कमाओ बस, उधर कोई इज्जत मान मर्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, तो पृथ्वी बोझी हो रही है हम पापियों से, तो इसके पृथ्वी को राइट है अच्छा अन्न नहीं देना, धर्म की रक्षा करोगे तब तो अन्न देगी, तब तो फल फूलों से लगी रहेगी ना पृथ्वी, उसको भी खुशी होगी कि सब तो भोग लगा के पा रहे हैं, भैया मेरे प्रभु को लगाएंगे और अच्छे फल बनाओ, आज्ञा देगी फिर क्या होते हैं सेवकों की बड़े बड़े दाने बने किए हैं, छोटा छोटा सेवों को बड़े बड़े दाने, आजकल छोटे छोटे होते जा रहे हैं, अब कमी जैसा आएगा कितने छोटे, और मनुष्य की मनुष्य भी बता रखा है बैगन के पेड़ में जाएंगे तो सीढ़ी चढ़ाकर इतने ऊंचे होने लग जाएंगे, पाप कर्म से हम ठीकने 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 छोटे छोटे हर चीज छोटी छोटी सब, मैंने चावल के दाने इतने लंबे लंबे देख रखे हैं, धीरे धीरे वो भी घट रहे हैं।
सब गांधी निष्कर्म थे। तो प्रकृति में प्रकृति पापी लोगों का बोझ सहन नहीं कर सकती है, इसलिए प्रकृति को राइट है मेरे प्रभु का खा करके मेरे प्रभु को प्रणाम नहीं करते हो, भगवान को मैं तुमको दिखाऊंगी। तब प्रकृति बोलती है बदमाशो, राहु केतु सही बोलते हैं, बदमाशो मेरे प्रभु की पृथ्वी पर घूम रहे हो और मेरे प्रभु का भजन नहीं करते हो, ठीक है मैं सारे साथी लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। सनी बोलता है मैं ठीक काम को बिगाड़ूंगा, एकदम सनी लगाऊंगा। ये जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में उपद्रव है और अमंगल भी, इसका एक ही कारण है भगवान के संग 36 का आंकड़ा, 3 6 30 लगा रखी है, जो भी उसको 63 बनाओगे 6 और 3 63 मतलब सत्संग है। सत्संग में जाने लगोगे, अपना जीवन सुधारने लगोगे, साधु संग करोगे, गीता भागवत घर में रखोगे, जो भगवान की वाणी है उसमें और उनको तुलसी रखोगे कि वही आपके घर में भगवान विराजमान शुरू हो जाएंगे, देवी वास हो जाएगा, देवी वास आखिरी वास नहीं होगा। कोई भूतप्रेत कुछ भी नहीं कर सकता है, जादू टोला कोई नहीं कर पाएगा। ये जादू टोला तभी तभी तक हमारे ऊपर चढ़ता है जब तक हम प्रभु को शरणागत नहीं किए रहते। मैं कोई कागज पर लिख लेता हूँ आप सबसे बड़े इंद्रजाल व्यक्ति को लाए यहाँ पर और मेरे ऊपर जादू करना शुरू करे उस समय तक, मैं केवल महामंत्र का जब करूंगा उसका सारा जादू पानी नहीं हो जाएगा, तो बोल देना वो मारेगा राज में, राज बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है और वो भागेगा या तो मरेगा या भागेगा। तो नहीं कर सकता है शुद्ध लोगों के आगे जो निरंतर हरिनाम जप रहे, जिनका शरीर भगवान को प्रणाम करने में लग रहा है, जिनकी आंखें प्रभु का दर्शन करने में, आंखें शुद्ध हो जाती है भगवान का दर्शन करने में, तो नहीं भगवान का दर्शन से आंखें शुद्ध होती है। भले मारा हम लोग इस संसार में पूरी दुनिया को क्या करते हैं पता है, ढूंढने जाते हैं क्या, कहां हमें सुख मिलेगा, कहां सुख मिलेगा, स्वर्गमुखी सुख मिलेगा, गोरा सुख मिलेगा, सुगरवेणी सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा, उधर धनी सुख मिलेगा, वहां सुख तभी तक मिलता है जब तक जेल में पैसे होते हैं, नहीं तो मिलेगा बड़ा बुरा लगता है। तो लेकिन ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने स्विट्जरलैंड गोवा उठी मंसूर बनाया, हम अक्सर बोलता हूँ कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
आप मर्दन ले लो करता रहेंगे,
एक मर्दन इनको दो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना समझे, कोई की कोई बहुत बहुत बड़ा मॉल बनाया रखता है, मॉडल बनाया रखता है, आपका मन ये करता है कि किसने बनाया होगा वो कैसा होगा बताओ, जिसने इतना सुंदर चीज बना दिया तो भगवान कैसे होंगे बताइए। भगवान सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, और उनकी सुंदरता पल पल में बढ़ती रहती है। भगवान गौरव की माला कर चुके हैं पर हम अपनी मन गर्भवर बपुर करणिका, और जो भगवान जंगल से आ रहे होते हैं तो सभी भक्त वृंदावन वासी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, गुरु गोपियां और भगवान के गुच्छे जैसे वाले मोर मुकुट वाले घुंघराले व्रत वाले और सुंदर मुखारविंद एकदम प्रफुल्लित, कैसा कश्मीरी एक सेब होता है पता है आपको, दरिशत सेब उतना बड़ा खिला हुआ, टमाटर जैसे लाल लाल गाल, चंद्र जैसा मुख, चंद्रमा जैसा कमल जैसा प्रफुल्लित, ताजा ताजा भगवान के मुखौर हल्का सा सांवला और उसमें दांत मोती जैसे, जैसे मोती होते हैं मोती, मोती कितना एकदम व्हाइट होता है, मोती जैसे सुंदर दांत और उसमें थोड़ा सा पान खाए हुए ठाकुर जी मुझे लालिमा और उसमें भी मन में मुस्कान अगर हंस दें तो क्या स्थिति होगी बताइए। ऐसे ठाकुर का दर्शन करना चाहोगे आप, मुझे कोई हानि नहीं
नारद
नाम तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा नाम तुम्हारा Thank you. महाप्रभु जाते थे और बिताए थे मिलते प्रभुपाद जी के प्रवचन लेकिन हुआ 45-40 मिनट के फिर हरिनाम सुन नाचना है और नचाना है ठीक है कि नहीं। तो जब हम ठाकुर जी के आगे नाचते हैं तो फिर संसार का नाचना बंद हो जाता है। सच में जितने भी हम लोग संसार में नाचे रहे हैं सब काम क्रोध लोभ को पहली चोरना और कंठ विषय की मांग हम सब नाच रहे हैं। कभी चक के द्वारा नाच रहे हैं कभी पत्नी नचा रही कभी पति नचा रहा है कभी बच्चे नचा रहे हैं कभी कोई नचा रहा है कभी रिश्तेदार नचा रहे हैं। नाच रहे हैं उनके आगे हूँ नाची तो रहे हैं तो अब मैं नाची हूँ बहुत गोपाल है गोपाल बहुत नाच लेगा अब आपके लिए नाचूंगा बस क्योंकि जब ठाकुर जी के लिए नाचोगे तो संसार का नाचना बन ठीक है। बोलो हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण
हरे
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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय
Thank you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीमद्भगवद्गीता यथा रूप अध्याय 9 अध्याय का नाम है परम बुद्ध ज्ञान। परम बुद्ध ज्ञान का मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बुद्ध ज्ञान, और बुद्ध ज्ञान केवल भक्तों को बताया जा सकता है, जो लायक बेटे हों उनको बुद्ध ज्ञान बताया जा सकता है। जैसे एक पिता अपने नालायक बेटे को कभी भी अपने घर की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे जाएगा। जो गुज बातें हैं विशेषकर उन बातों को बताएगा, बोलिए नहीं बताएगा, लेकिन जो लायक बेटा है उसको बता दिया जाएगा। उसी प्रकार ये भक्तों की सखा की थी, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ, और जो इस गीता को मेरे भक्तों में सुनाता है तो क्योंकि आप सब भक्त हैं, आप सब भगवान से प्रेम करते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं प्रोसेस में हैं, तो आप लोग भक्त हैं तो आपको सुनाने में गीता का जो आनंद है वो अन्य जगह आनंद, क्योंकि सुनने वाला नहीं है, सब नालायक हैं, उनको श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उनके सामने सुनाना आनंद आता है कि नहीं। उस श्लोक इस प्रकार से है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रेषति तद अहम् भक्त अप्रहत अस्मानि अस्मानि प्रियतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम् भक्तिम् अप्रहतम् अस्मानि प्रयतात्मनः। आप बोलिए सब लोग, पत्रम पत्ति, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो कोई मे मुझको भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है तथा वह अहम मैं भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित अस्नामी स्वीकार करता हूँ प्रयत आत्मन शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद और तात्पर्य पर महाभागवत जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद इस प्रकार से है। इस श्लोक का हम पुष्पम गाय है हर बोल ध्यान आ रखे, ऐसा नहीं कि पत्र पुष्पों को तो हमने सुना ही है,
गोपाल जी क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर गोपाल शास्त्र लिखते हैं। और जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा तब, क्योंकि सारा शरीर बिल्डर होता है अन्न, और जब तक हम शुद्ध नहीं बनते हैं तब तक हरिनाम शुद्ध होगा ही नहीं, और जब तक हरिनाम शुद्ध नाम शुद्ध ढंग से नहीं जपेंगे तब तक हमारी चेतना शुद्ध होगी नहीं, और जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक कृष्ण को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण परम शुद्ध है, सत्वम शुद्धम विशुद्ध सत्वम, सबसे शुद्ध है भगवान। तो उनको समझने के लिए अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो वहां की शुरुआत कहां से होती है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हरिश्चे समय भोजन से, क्योंकि भोजन लेने किस टाइप का कहते हैं ना, किसका अन्न खाया तूने, तो ये श्लोक इसलिए ले रहे हैं, भले ही सुना हो लेकिन व्यस्त नहीं है इसके, इसके इसका दीप क्या भाव है देखिए आप लोग बुलाइए। यदि कोई प्रेम कथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कौन कह रहा है बात को, भगवान गणेश जी तो ही बोले ना, पहले बात किसने बोली है भाग्य भगवत गीता मान देना चाहिए एकदम ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई प्रेम से, प्रेम तथा बोलिए ध्यान से समझिए, अभी थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर पानी मत देना है, थोड़ी देर जरा थोड़ा सा ये बोल देती है, कथा सुनोगे प्यास बुझ जाएगी, नहीं तो प्यास का कोई भरोसा थोड़ी गर्मी से लगती रहती रहती है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम भी और भक्ति दोनों चीजें, मुझे एक पत्ता पत्र बोले पत्ता है, और उसमें भी विशेषकर तुलसी का पत्ता ठीक है कि नहीं, तो पत्ता अगर भगवान के आगे आप रखोगे, तुलसी पत्ता गरीब से गरीब व्यक्ति चढ़ा सकता है, भारत में तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को होता है प्रजाजन, तो पत्ता बिना मांगे भी किसी की तुलसी से आप तोड़ भी लोगे तो कोई आपको डांटने वाला नहीं, क्यों तोड़ा, इतना सस्ता मिलता है पत्ता, इतना सस्ता, फिर भी बुरा नहीं मानना, हाथ खड़ा करना। तुलसी पत्ता पिछले एक महीने में किस व्यक्ति ने भगवान को एक रुपये भी चढ़ाया तोड़ करके ले जाकर, हाथ खड़ा करना, वो जिन्हें चढ़ाया सब नहीं चढ़ा देंगे, अभी तो पुरुषोत्तम महाराज है समझे नहीं, तो क्योंकि सुनते हुए लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, आज सुना है तो ज्ञान है बस, लेकिन तोड़ करके ले जाना है तब वो प्रैक्टिकल होगा। तो तुलसी पत्र जो है भगवान को इतना पसंद है, प्रेम और भक्ति के साथ में याद रखना, पत्रम पुष्पम और फूल, फूल भी फूल का भी आकार नहीं पड़ा है, लोग इतने इतने मोटी मोटी माला देने की बरमाला बधू माला पहनाते ना, तब कहां से आ जाती है, रजनी बन जाती है सब आ जाता है, सारे फूल हैं किसके लिए बताइए, जिसने बनाया उसके फूल है। गोपाल जी यही बोलते थे कि एक व्यक्ति मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक नॉन डिवोटी अभक्त, एक भक्त एक अभक्त में क्या अंतर है, एक भक्त ने फूल को देखा, नहीं एक अभक्त ने देखा फूल को, ओह वेरी नाइस पावर है, कच्चिक किया तो तोड़ा, गुड गुड वेरी गुड थैंक यू, भक्त ने देखे ध्यान से सुनिए, भक्त ने देखा पेड़ को फूल के पेड़ को, भक्त ने सोचा हाँ ये फूल ये पेड़ किसका है, तो भगवान ने बनाया है, प्रकृति भगवान की है, वृक्ष उनका है, तो ये फूल भी उनका होना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको प्रभु के लिए लेके जाऊंगा। अभक्त और भक्त ने अंतर देखिए, भक्त सोच रहा है किसका पेड़ है उसको ये फूल जाएगा, यही है कर्म बंधन इससे नहीं लगेगा, बल्कि कर्म से अगर बंधन है ये तो खुल जाएगा आपका बंधन, इतना करने मात्र से ये कृष्ण का है, ये पहले कृष्ण को चढ़ेगा, हे कृष्ण चढ़े आप सुनिए इसको, यही भक्ति है बस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। क्या ये हमारे माइंड में आता है सेव को देखते ही, हाँ ये सेव कंट्रोल नहीं है, अभी भोग लगना वहां से पहले लाया खाया, बल्कि कितने लोग छाते छाते शुरू कर देते हैं, क्या होता है
छाते छाते शुरू कर दिए, फिर भोग नहीं लग रहा है उसका, क्योंकि आदति नहीं भोग लगाने की, ये भक्ति नहीं है। हमारी जिह्वा जो है, हम जिह्वा के दास बन गए, गुलाम बन गए हम। एक जिह्वा ने ढाई इंची की जीव ने हमें नचा रखा है। करुणदास की रोशनी कुल्फी खाने के लिए यहाँ से फैजाबाद से जा रहे हैं, रोशनी कुल्फी रास्ते में जाम लगा हुआ है। ढाई इंची की जीव जो है हमें नचा रही है, जाम लगा हुआ है। यहाँ से गोलगप्पे गाजियाबाद में नया मॉल खुल गया है, वहां जाएंगे है? तो कहाँ कहाँ सब जो है हमें नचा रहा है। तो पत्रम पुष्पम, फूल जो है, फूल भी भगवान का, भगवान बोलते कोई एक फूल ही। आप बताइए कितनी शक्ति डिमांड है मेरे प्रभु की, लेकिन भक्ति के साथ में शक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ में ध्यान है। दुर्योधन का मेरा त्यागो साग घर खाई, दुर्योधन पटाने के लिए आया था कृष्ण मेरी साइड से लड़ने लग जाएंगे, अंदर से कपट था बाहर से बढ़िया बढ़िया, कृष्ण हे कृष्ण हे। भगवान समझ गए दुर्योधन से, बोले दुर्योधन मेरा बुलावा तो आज दूसरी जगह है। कहा? बोले बिदुर जी है ना, बिदुरा ने बुला रखा है, बिदुर जी वहीं पर बोलते हैं। मैंने कब बुलाया आपको भगवान को, तो मैंने कब बुलाया था, मैंने तो वैसे भगवान ने कह दिया भाई, तो बिंदुरानी को लेकर घर चले गए। वहां 56 भोग 36 दर्जन छोड़ दिया अहंकारी के, क्योंकि उसमें अहंकार की भू थी, क्योंकि दुर्योधन खिलाने के बाद मैंने खिलाया हरे के सब आपको, ऐसे ही सरतरा दिमाग वाला, जताता ज्यादा है करता कम है। तो इस संसार के लोग भी जताते ज्यादा है करते कम है। एक पेन देंगे, मैंने तो उसको ये दिया था जिंदगी भर, भगवान जिंदगी भर दे रहे हैं। कभी कहते हैं मैंने तुमको ये दिया था साई बाबा बाबू, घर मेरा दिया हुआ, ईंट मेरी है, सीमेंट बदरी होगी सब मेरी है, उसकी हवा यहाँ की साई बाबा दिया है, जो बहरी मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है, जितने यहाँ खेलियों में रेलिंग है, फल लगे हुए हैं, ये फल के वृक्ष मैंने बनाए थे, फल मैंने बना रखे हैं। भगवान कभी बोलते हैं अनंत काल से दिए जा रहे हैं, कभी भगवान ने जताया नहीं अपनी दी गई चीज को, और हम लोग दो चार चीज गिफ्ट क्या दे दें, बाप रे बाप, भगवान से कम नहीं होंगे स्थिति हमारी बिल्कुल खत्म, दो चार चीज देने के बाद। तो पद्म पुष्पम फलम, आगे फल हो गए भगवान, कितनी शक्ति डिमांड है मेरे प्रभु। प्रभु जी आपके घर में कोई आए, और कोई आए बहुत बड़ा व्यक्ति, और आप उसको एक पत्र दो, उसको एक पत्ता आगे रख दो, आपके स्वागत में एक पत्ता रखा है, दोबारा आएगा आपके घर के दर्शन करेगा, तो भगवान शादी में पत्ता खिलाएंगे, पत्ता खिलाया बोलेगा वो पत्ता। और मेरे तीनों लोगों के सामने मेरे प्रभु, जिनके अनंत अनंत कोटि भक्त, जिनके लिए अलग अलग प्रकार से प्रेम पदार्थ, चूसे जाने वाले पदार्थ, रस वाले पदार्थ भोग लगा रहे हैं अलग अलग मंदिरों में, मेरे प्रभु इतने नामी गिरामी मेरे प्रभु, सब कुछ बनाने वाले सब कुछ उनके एक पत्ते से संतुष्ट हो जाते हैं। ये है उनकी भक्ति, ये है उनकी दया का, दया का मतलब दया की लिमिट क्रॉस हो गई, खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं प्रेम के साथ में। तो फल या जल, बताइए पानी भी तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा एक गिलास पानी को, अगर आपका सच्ची भक्ति है, एक गिलास पानी ही, एक तुलसी डाल करके अपने प्रभु को सवेरे सवेरे लगा हो, आप देखो भगवान खुश हो जाएंगे, आपको कृष्ण अपने को दे देंगे आपको। बालक उनको माँ को सुनने नहीं दे देंगे, अभी याद आएगा सवेरे का। तो कहते हैं भक्त सब कुछ करने के लिए निछावर हो जाता है अपने प्रभु के लिए। कहते एक भक्त था, वो भगवान के लिए जा रहा था, तो रास्ते में फूल की दुकान पड़ी, तो उसने एक फूल का गुच्छा का दाम पूछा कितने हैं, उसमें 4-5 गुलाब थे, उन्हें बोल दिया 10 रुपए के। भक्त ने बोला ठीक है पैक कर दो, जब पैक कर दो बोल ही रहा था पत्ते के राजा घोड़े में बैठ कर, बोले भाई मुझे पसंद आ रहा है कितने का है, उसने बोला 10 रुपए, बोले 20 रुपए दूंगा मैं, मेरे को ले। राजा ले जा रहा था अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, तो अब फूल वाले को तो मजे आ रहे भैया, उसने बोला 20 रुपए मिल गए। तब तक भक्त ने बोला मैं 40 रुपए दूंगा, इसने बोला 80, भक्त ने बोला 100, इसने बोला 200, 400, 500, 1000, 2000, भक्त ने बोला 4000, इसने बोला 5000, भक्त ने 10000, इसने बोला 20000, भक्त ने 40000 रुपए, इसने बोला 50, भक्त ने 1,00,000 रुपए। भक्त ने जब 1,00,000 रुपए बोला कि कुछ भी नहीं उसके पास, छोटी कौड़ी नहीं, अमृत भक्त के पास में नहीं था, लेकिन फिर देख के अपने प्रभु के लिए देने के लिए सौदा हो गया, 1,00,000 रुपए बोल दिया। इसने सोचा कि 10 रुपए का फूल को मैं इतना फिर ले जाऊंगा क्या, प्रेम नहीं है ना, इतने रुपए में क्यों लूंगा बताओ, 1,00,000 देने तो मरने तो पागल दे चला गया है। कौन? राजा। और भक्त ने क्या किया, इसको बोला फुलवारी, बोले भाई 10 रुपए में तो देने से रहा क्योंकि तेरे सामने बोली ले ली है, भाई मैं अभी जाके पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, तू इस फूल को किसी को देना मत, ये घर गया अपनी झोपड़ी बेच दी इसमें 20-30 हजार में बिकी हो, अपने पत्नी के गहने बेच दिए होगी 30-35 हजार रुपए, 60 हजार रुपए कुछ कर्ज लिया अपना, घर से बर्तन भांडे सब बेच करके देखो प्रभु के लिए क्या कर रहा है, 70,000 रुपए इसके बन पाए, 30,000 नहीं बन पाए। फूल वाले के पास गया, काल में बोला भाई 30,000 रुपए हाथ में ले लूंगा, मानूंगी 70, फूल वाला तो अंदर से गड़बड़ हो रहा है, 70,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर देना कोई बात नहीं, 70,000 तो मिल रहा है उसको, फूल दिया इसको, ये लेगा करके क्या किया इसने, पुजारी को दिया भक्त ने मंदिर में, बोले कि भगवान के चरणों में रख दो, जो ही भगवान के चरणों में फूल गया तो भगवान का गर्दन क्या हो गया, झुक गया अपने भक्त की भक्ति से। रातों रात भगवान ने क्या किया, उस फुलवारी को सबने में बोले सारा का सारा एक एक पैसा वो तू वापस दे देंगे, नहीं तो तेरे को सब उधार लूंगा मैं पूरा। तो अगले दिन वो 70,000 रुपए लेकर के वापस ले आया, और राजा को भी पता चला कि देखो इस प्रकार से भगवान का मुकुट नीचे हो गया, तो राजा को भी बड़ी शर्म आई थी, बड़ी लज्जा आई, देखो मैं कहा स्त्री के लिए, और तब प्रेम का पता चला, देखो जब स्त्री की प्रेम की बात आई तो 50,000 के ऊपर नहीं बोली नहीं लगा पाया वो, और भक्त जो है कुछ नहीं है लेकिन 1,00,000 रुपए की बोली लगा, बस बल्कि भक्त अगर और भी होता क्या करते पता है, भक्त अपना ही देवता ठीक है, मैं ही दाव कर लगा रहा, मेरे को तो नौकर लग गया, कौन दे देंगे इससे ज्यादा क्या कर सकता है, ये है भगवान की भक्तों की भक्ति। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान बोलते हैं जो दुर्वासा मुनि, जो किस प्रकार के भक्त हैं मेरे लिए सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार रहते हैं, हे दुर्वासा मुनि तुम कह रहे हो कि मैं चक्र को वापस ले लूं, निसंदेह ये चक्र मेरे घर में नहीं है क्योंकि मैं तो अपने भक्तों का गुलाम हूं, जैसा मेरे भक्त नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूँ, उनके प्रेम में दिख गया हूँ मैं, तो चक्र भी दिख गया मेरा, इस चक्र भी मेरी कहा उन्हीं के पास जाओ, वो समा कर दे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके सिवा तो किसी को नहीं जानता हूँ, वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते हैं। तो ये है भगवान की भगवत्ता, इसीलिए बता रखा था जैसे आजकल श्लोक चल रहा है, भक्ता नाम मान वर्धन, अपने भक्तों का मान वर्धन करते हैं भगवान, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, उनके घर में आकर के उनका दूत बन करके, उनका नौकर बन के, उनका सारथी बन करके, समझ रहे हैं, और अपना मान उतर दिया, फिर तो पिता ने बोला आज तो तुमको मैं अस्त्र उत्साह रहूंगा, अब क्योंकि भगवान ने बोला कि मेरे भक्त का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा मान जाने को कोई बात नहीं, अपने भक्त का मान सुदामा के पैर पखार लेंगे, तो भक्तों का मान बढ़ाया ना, अपना गद्दी से उठ के नीचे बैठे हैं, आंसुओं से चरम जोर, रुक्मणी और सत्यभामा फटी फटी आंखों से देखी रही, ये फटा भामा ब्राह्मण आया हुआ है, धोती में छठे धो रहे हैं और द्वारका भी किसको क्या कर रहे हैं, समझ तो रही ब्राह्मण है, ऐसे वैसे तो कोई काम नहीं कर, तो भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पूरे भागवत जो है भक्तों का मान बढ़ाने में लगी हुई भगवान ने, श्रीमती राधा रानी के चरणों में भगवान मम शिरसि मंडलम देवी पद पल्लवम उदारम जय देव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान राधा रानी के चरणों में अपने सिर को झुका देते हैं, बोले हे राजी
अस्त्र मान जाओ ना।
भगवान को राधा रानी का मान बढ़ाने में आनंद आता है
और प्रभुपाद जी को क्या चैतन्य महाप्रभु प्रचार नहीं कर सकते थे पूरे विश्व में?
प्रभुपाद जी को पूरे विश्व में मान बढ़ाया प्रभुपाद जी का,
भक्ता नाम मान लो
प्रभुपाद जी को सही दिया
जाओ। क्योंकि भगवान भगवान के जो भगवान जी ना अपने भक्तों को मान लेते हैं, भक्तों जैसे पिता चाहता है मेरा बेटा मेरे से भी बढ़कर चले जाए तो खाओ ना। तो यहाँ पर जैसे भगवान नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। दिव्य दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल अलौकिक, उसको अलौकिक बोलते हैं, लौकिक नहीं हो भगवान की भक्ति, लौकिक नहीं है, इसमें सब में अलौकिक फल मिलने वाला है। और प्रेमा भक्ति प्रेम से की हुई भक्ति, फोर्स भक्ति नहीं, जबरदस्ती भक्ति नहीं, प्रेममयी भक्ति, स्वतः ही राग भगवान के लिए उत्पन्न हो रहा है। जैसे सत्य भामा जी ने सत्य ने रुक्मणी जी के पंखा झल रही थी, उनको बातों बातों में कृष्ण का शेर आया वहां पर, बोले कि हे कृष्ण आज तो आपने जाना है वृंदावन को जाना है ना, ऐसा बोला ही था वो। रुक्मणी जी पंखा झलते झलते बेहोश हो गई और गिर पड़ी। असहनीय है उनके लिए कि कृष्ण जा रहे हैं आप, बस इतना था कृष्ण कह दे मैं चले जाऊंगा तो रुक्मणी जी वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ती। इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, इतना प्रेम करते हैं द्वारकावासी मक्कावासी सब भगवान से, अनेक जन्मों से उन्होंने प्रेम डेवलप किया है। कैसे भगवान का सत्संग सुनकर के सुनकर के साधु संघ में साधु संघ का पकड़ देखना नहीं होता है। जैसे कई अक्सर लोग मंदिर आते हैं मूर्ति के दर्शन करके घर वापस आ जाते हैं, क्या लाभ हुआ जी? ये तो ऐसा ही हुआ, हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल के दर्शन करके घर आ गए, क्या लाभ हुआ? हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर उसको अपना मर्ज बताना पड़ेगा, फिर जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं भगवान से डायरेक्ट हमारा संबंध है, वो भक्तों से मिलते नहीं, भक्तों को आंख का झाड़ समझते हैं। तो जो व्यक्ति भक्तों का आंख का झाड़ समझेगा क्या मेरे प्रभु उससे प्रेम करेंगे? हैं बोले भगवान अपने अपना प्रेम खुद अपने से खुद प्रेम करते हैं क्या? उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं, तो भक्तों से सीखनी पड़ेगी भक्ति, भक्तों के संग बैठना पड़ेगा, सकल पुरुष से नहीं पता चलेगा उनके अंदर कितनी भक्ति है। जब आप बैठोगे सुनोगे उनके संग माला करोगे उनके संग उठोगे बैठोगे तब आपको उनकी भक्ति के बारे में पता चलेगा कि उनका भगवान के प्रति क्या भाव है, वो क्या से क्या नहीं कर सकते अपने प्रभु के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते है नहीं। तो इसके भक्तों का संग का मतलब केवल सकल पुरुष देखना नहीं, उनके संग बैठ के कथा सुनना, भगवान के गुणों का भगवान के चरित्र को सुनना, तो ऐसा आश्चर्य फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहां स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहज से स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना मत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह सरल है और व्यापक है, मतलब सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि सर्वत्र तुलसी है, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र फल है, सर्वत्र फूल है, सर्वत्र जल है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा? ये वही होगा जो अवोध दर्जे का मूर्ख होगा। कबीरदास जी उनकी तरह किसकी तरह, कालिदास जी की तरह, जिस टहनी में बैठा है उसी को कहा जाना ठीक है कि वही मूर्ख ही होगा भाई। और सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा, कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं किंतु अभक्त से वे पूरी इवेंट नहीं चाहते। भाव का भूखा हूं भाव भी एक सार है, भाव से जो मुझे भले भव से मेरा पार है, अन्न धन वस्त्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही हो जाए ये मेरा सत्कार है। अन्न धन वस्त्र तो वही देने वाले भैया,
क्या दे सकते हो उनको? प्रभुपाद जी कहते थे आप अगर आप भगवान को कुछ देना चाहते हो तो उनके पास अनंत हाथ है, कितना दे पाओगे दो हाथों से? और अगर भगवान कुछ आपको देना चाहे मतलब तो दिन दो हाथों से कितना दे पाओगे बताओ, क्योंकि उनके अनंत हाथ, कितना दे सकते हैं वो, समझे नहीं कितना दे सकते हैं। तो कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से कोई भी भेंट नहीं करते, वही किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी भगवान ये कह रहे हैं प्रेम के साथ में ये दे रहा हूं तुम्हारे प्रेम को, जैसे गोपियों के मक्खन को भगवान ने क्या किया, 900,000 गाय जिनके घर में है उनके मक्खन के भूखे होंगे? नहीं, मक्खन मतलब सॉफ्ट मुलायम। तो भगवान का एक नाम है मनमोहन, मन को मोहने वाले। तो भगवान ने देखे भगवान मक्खन के प्रति क्यों आकर्षित हुए, क्योंकि गोपियों के मन मक्खन की तरह थे, सरल थे, सॉफ्ट थे। तो भगवान उनकी भक्ति से पूर्ण रूप से आकर्षित थे, भगवान को उनसे प्यार हो गया था। जैसे संसार में लड़का को लड़की से, लड़की को लड़के से प्यार होता है ना, इसे तुच्छ प्रेम है, थोड़े दिन बाद कम होने लग जाता है। तो भगवान भी अपने भक्तों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और कितना प्रेम करते हैं पता है, अपने को बेचने को तैयार होते हैं, अपने को बेचने को तैयार हो जाते हैं। गोविंद लीनो गोपाल लीनो मोर मायरे, मैंने गोविंद लीनो मोर मायरे। आगे राक्षो जी राक्षो, मैंने चाकर राक्षो। बड़े खुशखबरी, बोले क्या, मैंने एक नौकर रख लिया है। बोले कौन? बोले गोरे को तो नौकर रखा है, बड़ा सुंदर झाड़ू लगाया और दर्शन भी दे रहा है। तो रास्ते के बाद तो भगवान अपने भक्तों के आगे पीछे घूमने में बड़ा उनको अच्छा लगता है। कृष्ण थोड़ा सा और मटको ना और मटक रहे हैं, उनको उनके भक्त कहे कि ठीक है तुम नाचो, और ठीक है मैं नाचूंगा, क्योंकि बिक गए हैं उनके प्रेम के लिए, प्रेम के वस्त्र। जैसे आप आपको किसी से प्रेम हो जाए उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, ये है। वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते, ये विनिमय मतलब लेन देन। क्या लेन देन? बोले प्रेम और भक्ति के संग दोगे तो ठीक है, तो मैं आने को तैयार हूं तुम्हारे पास कृष्ण। इसीलिए भगवान देखो कोई भक्त उनको 9 बजे उठा रहा है, भगवान में से कोई बात नहीं, उसके लिए 9 बजे उठ रहे हैं। अब वेट कर रहे हैं कब नहाएगा, कब मेले बनाएगा, कब खाना लाएगा। तीनों लोगों के स्वामी भक्त के आगे नाच रहे, मतलब तब खिलाएगा तब पेड़, और ठंडी में तब स्वेटर बुनेगा, ठंडी अच्छी भगवान। भगवान वहां पूर्ण रूप से भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के बिक गए हैं, बस हो गया। क्योंकि अब भगवान चाहते हैं तू जब मुझे घर लाया ही है तो खिला, तू ही लाया है ना प्रेम के कारण। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं चाहूं तो सारी दुनिया की व्यवस्था कर सकता हूं अपनी, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूं तुम मेरे स्वेटर बुन के ला, तुम मेरे से पंखा लगा गर्मी में, तुम मेरे से फूल ला। भगवान चाहे तो किसी के मन में प्रेरणा दे दे, वही मैं तुम्हारा छत्ती फूल ले आएगा। नहीं नहीं, भगवान उसकी उसका प्रेम चखना चाहते, तो अच्छा ठीक है तेरे अंदर कितना प्रेम है, समझ रहे नहीं? दिख जाते हैं भगवान, ऐसे लोगों को कुछ 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 करना ही नहीं आता है। बच्चे की तरह भगवान शरणागत हो जाते हैं भक्त के आगे। आरती ठाकुर जी कहा है, मैं तुम फोटो दूर करता हूँ अंकित को देखे हैं, कहा है ठाकुर जी वाले फोटो वाले जो है कार्टून कृष्ण, कार्टून कृष्ण, कार्टून कृष्ण है उसको ऊपर गया ना ऑफिस में, इधर इतने सुंदर कार्टून कृष्ण है, इनको किसी ने दे दिए इतना बढ़िया, इतना सुंदर छवि है अद्भुत। और ऐसे देख रहे जो देखेगा उसी को देख रहे, आपको लगेगा मेरे को ही भूल रहे हैं, इतने प्यारे और सुंदर। और जो उनको देखता था ये बोलता था मैं इसको ले जा रहा इतने मत। तो इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार घोषित करने के लिए हुआ है,
भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शास्त्र से ब्राह्मण विद्वान धनी महान विचारक होने से कृष्ण किसी भी प्रकार की भेंट देने में तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना मैं किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो भक्ति अहेतु की है, अहेतु की मतलब बिना हेतु की। जैसे माँ अपने बच्चे का बिना किसी लेन देन की सेवा करती है, ऐसा नहीं कि तू बड़े होके मेरे को खिलाएगा, मैं स्वेटर दे रही हूँ तू मुझे स्वेटर देगा तब दूंगी, नहीं तू दे ना दे, देने की वजह से करेंगे नहीं, स्वाभाविक प्रेम की वजह से। ऐसा भगवान के भक्तों का भगवान से प्रेम रहता है, इसको बोलते भक्त, जो अन्य किसी का संभव नहीं है। इसलिए भगवान को ज्ञानी वस्त्र यही बोल रखा है, ज्ञानी वस्त्र यही बोल रखा है, भक्त वस्त्र बोल रखा है। क्यों? वस्त्र का मतलब होता है बछड़ा, और मतलब जैसे एक गाय उसके बछड़े को जहां जहां ले जाएगा गाय भागी, इतना प्रेम करती बछड़े से। उसी प्रकार भगवान जहां जहां उनके भक्त होते हैं वहां वहां भगवान भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि वो वस्त्र है, वस्त्र अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेमी। समझने में होगी ऐसे हैं ठाकुर जी, तो ऐसे ठाकुर जी को क्या नहीं दे सकते हो जो भक्त बताइए। सब गुरु जी का है बहुत सुंदर सुंदर बता रहे ठाकुर जी, बतला करके वो एकमात्र भुगतान आदि स्वामी समस्त उम्र की भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं है। कितना सुंदर होगा, इसीलिए अंडम मटनम चिकनम प्याज लहसुनम नहीं करने वाला है, पत्रम पुष्पम फलम करे, ठीक है जी, ये अंडम मटनम चिकनम प्याज लहसुनम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो इसका उल्लेख करते या लिखते हो, ठीक है एक अंडा ही चढ़ा देना, एक प्याज की गांठी दे देना, लहसुन का एक अंदर का पतली दे देना, ऐसा नहीं लिखा भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम खुद, ठीक है। तो उन्हें पत्र पुष्प फल तथा फल अर्पित किए जाए उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें समझना चाहिए कि मांस मछली अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक अन्न फल दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो बैठे बैठे अंडा नहीं अंडा खाते हैं, सब बताना हाथ खड़े कीजिए, एक भक्त हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, मांस खाते हैं जो ईमानदार व्यक्ति हैं, कम से कम ने हाथ खड़ा किया। और कौन है पीछे को मत देखिए, इधर और कोई है जो मांस मांस खाते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं लगा रहे कि वो जाना खा रहे। तो मांस खाने से हमारा मन जो भी क्या हो जाता है, हमारी चेतना दूषित हो जाती है, मरी हुई चीज होती है ना, मरी हुई चीज, मांस तो मारना पड़ेगा पहले मुर्गे को, पहले गोश्त बकरी मारनी पड़ेगी, जो मारता है जो पकाता है जो खाता है जो बेचता है सबको बराबर पाप लगता है, बराबर। जो पकाता भी है उसको भी बराबर पाप लगता है जो खाता भी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दूध दही घी मक्खन बना रखा है, ध्यान से सुनिएगा, काजू किशमिश बादाम अन्न, ठीक है कि लेकिन सबको छोड़ करके हम अगर नोचने वाली चीज ही खाएंगे तो फिर दया खत्म हो जाएगी। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन देने का अधिकार नहीं है, हम सभ्यता से कोसों दूर नहीं सकते। और मांस खाने से दया खत्म होती, धर्म का एक पैर टूटता है, धर्म के चार पिलर हैं जिस पर धर्म टिका है, दया तपस्या, तो दया प्रभावित होती है मांस खाने से। तो इसलिए हम लोग ये अभक्ष चीजें ये नहीं खाते हैं। किसी को मार करके बताओ, हम किसी को पहले मारना पड़ेगा ना, दया खत्म करनी पड़ेगी, और फिर उसको खा कैसे जाते हैं, मरी हुई चीज तो संस्थान जाती है, तो जीते जाते संस्थान क्यों बना रहे भूमि को। और मांस खाने से धार्मिक तत्व नष्ट होते हैं,
ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पर प्रेम के संग बोलते हैं एक तुलसी। तो मैं थोड़ा सा सुनूंगी भैया तुलसी की महिमा सुनिए दो मिनट के लिए। तो तुलसी का पत्र देखिए, ये तुलसी देवी की कहानी जो है पद्म पुराण से ली गई है। तुलसी देवी कौन है, थोड़ा सा ही ज्यादा नहीं है लेकिन आपके जानने लायक है एकदम, आप हो जाओगे क्योंकि तुलसी कालीराम जलदान भी हुआ भी इस समय में, ये पुरुषोत्तम अधिक मास है, ये तीन तीन साल बाद आता है ऐसा साल जिसमें एक महीना एक्स्ट्रा होता है, लौट दर्द बोलते हैं इसको अधिक मास। और ये मास मूर्ख लोग कहते हैं कि ये बुरा होता है, महामूर्ख लोग ऐसे भी संसार में लोग नहीं, ये मास कार्तिक के बराबर फल देने वाला है, इसमें एक माला करोगे हजार माला के बराबर फल मिलेगा, एक पुण्य करोगे हजार पुण्य के बराबर, एक सत्संग अचन करोगे हजार सत्संग के बराबर, और एक पाप करोगे हजार पाप के बराबर भी फल। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नीचे सोना चाहिए ऐसे बता रखा है, जल्दी उठना चाहिए, स्नान करिए, माला करनी चाहिए, स्त्री पुरुष को दोनों को भगवान से प्रेम करना करें, छोटे वक्त भी भगवान का कथा पढ़ के कृष्णा भोग पढ़ के सुने पढ़ें और तुलसी में दर्शन करें, तुलसी से प्रार्थना करें। अब ध्यान से सुनेगा मैं कथा बता रहा हूँ, आपके जानने योग्य है, बड़ी आकर्षक कथा है। भगवान कृष्ण की महान भक्त है तुलसी देवी, हाँ लेकिन क्या उन्हें इतना महान बनाता है, क्यों इस कान के हर मंदिर में हर वैष्णव मंदिर में उनकी पूजा होती है, उन्होंने इस तरह पूजनीय होने के लिए क्या किया, उनका क्या विशेष स्थान है। भक्ति रसामत सिंधु में स्कंद पुराण से चौदह जी के अनुच्छेद से लिया है, मैं तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि तुरंत ही सारे पापों को नाश कर देती है। यानी कानी चौपापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चौनी तानी प्रणचंती प्रदक्षिणा पदे पदे, जिनकी केवल प्रदक्षिणा करने मात्र से हजारों ब्राह्मण का भी किसी ने खून किया हो, यानी कानी चौपापानी या किसी भी प्रकार का पाप हुआ हो, उससे ब्रह्म हत्या तक भी ब्राह्मण की हत्या भी, तो प्रदक्षिणा पदे पदे एक एक पैर जो हम रख रहे हैं उस समूल रूप से वो पाप नष्ट हो जाएगा एक प्रदक्षिणा से। जब भक्त की प्रदक्षिणा लगाने से यह हाल है तो कृष्ण की प्रदक्षिणा लगाने से क्या होगा बताओ, जन्म मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा भी गया है सौ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ज्योति स्वर्ग की ओर जाता है, इंद्र बनता है, लेकिन कृष्ण को किया गया एक प्रणाम वो जो है उसको मुक्त करके भगवत धाम ले जा देगा। एक प्रणाम जो है सौ अश्वमेध यज्ञ भी उसकी बराबर नहीं कर सकते भगवान को किया हुआ प्रणाम, एक प्रणाम। इसलिए यहाँ भक्त लोग ज्यादा कष्ट अपने नहीं उठाते हैं, वो कष्ट उठाते हैं इसलिए प्रभु की भक्ति के लिए रखते हैं। आंखें खोलिए कृपा करके, हरि बोलो हरे कृष्णा बोलिए। तो मैं तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि तुरंत ही सारे पापों को नाश करती है। सिर्फ तुलसी को देखने, देखिए ध्यान से सुनेगा पूछूंगा बीच में, सिर्फ तुलसी को देखने से, अरे तुलसी को देख रहे हो आप, छूने से मात्र से ही व्यक्ति को सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। अब बताइए फिर आया क्या चाहिए आपको, फिर भी हम अघोरी बाबा और अघोरी बाबा के चक्कर में शादी ग्रहण के चक्कर में खड़े हुए हैं, घर रहने वाले शुद्ध बनाने वाली चीज है, छूने और देखने मात्र से, और तुलसी को सिर्फ प्रणाम करने पौधे में पानी डालने मात्र से ही व्यक्ति नारायण जी को जो पापियों को सजा लेते हैं उनके पास जाने के भय से खत्म हो जाता है, प्रणाम करने और पौधे में पानी डालने मात्र। अगर कोई तुलसी का पौधा उगाता है तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, और जब तुलसी के पत्ते भक्ति से भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम की। तो बता रखा है चंद्रभामा एक सखी है, श्रीमती राधा रानी की सहेली ने ग्रंथों से सीधे गर्भ मुनि से शिक्षा सुनी थी। श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि कृष्ण को खुश करने के और अच्छे भाग्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें किस तरह की पूजा करनी चाहिए। देखिए राधा रानी के अंदर कृष्ण भक्ति ओत प्रोत है, भरी हुई है खचाखच, लेकिन फिर भी राधा रानी को जो है क्या है वो नहीं है, क्या शरीर तक तृप्ति नहीं है, और जैसे बिजनेसमैन को तृप्ति नहीं होती है, बोलते एक कंपनी और जोड़ दू, एक और दो गाड़ी और ले लू, एक और वो कमाते ही रहता है जिंदगी भर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर राधा रानी इतनी भक्तिमान है कि फिर भी भक्ति में तुष्टि नहीं है, और मैं और कैसे कृष्ण को खुश करूं और उनकी कृपा कैसे लूं और उनकी भक्ति मेरे हृदय में कैसे आएगी। बोलो हरे कृष्ण। ये प्रश्न पूछ रही किससे? चंद्रभामा से। इस प्रश्न पर एक क्षण सोचने के बाद चंद्रभामा ने कहा, तुलसी देवी की सेवा महान वरदान, अच्छा भाग्य आशीर्वाद ये व्यक्ति को श्री कृष्ण का साथ प्रदान करता है। क्या वरदान? अच्छा भाग्य आशीर्वाद और व्यक्ति को कृष्ण का साथ प्रदान करता है। कौन? तुलसी देवी। आप तुलसी को बढ़िया से लोग सूख जाती है तो घर के अंदर रखो, जो पूजा वाला तुलसी है शाम को बाहर अपना तो इसी में रह गए, उसको धूप पर सुखा दिया एकदम, तो कहां भक्ति है। ऐसे ऐसे भक्त होंगे घर रखें केवल तुलसी के लिए, घड़ा उस घर से पानी निकाल के ठंडा ठंडा मतलब उसको चल सकते हैं, भक्ति है ना निकल रहे हैं। तो हम ऐसा पीते हैं उनको गर्म हॉट हॉट एकदम बिल्कुल जैसे निकल रहा है, उसके पास चल रहा है डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो क्यों तुलसी टिकेंगी बताइए? या उनके ऊपर शेड बनाना, गर्मी है मान लिए बाहर रखे तो ऐसी शेड बनाओ कि उनको छाया रहे ठंडी के लिए, न तो उसमें बोझ पड़ेगी ना उसमें गर्मी वो लगेगी। तो इसको कहते हैं भक्ति। और ये बातें जो है जिनके मेरे भक्ति में उनको लगेगा क्या क्या बोल रहे स्वामी जी, तुलसी तो देखिए इससे क्या होगा कि भक्ति नहीं है, समझ रहे हैं। हृदय जो है बिल्कुल भरा हुआ पाप से, तो उसको लगेगा क्या है तुलसी की बात बोल रहे हैं, समझ नहीं आएगा पापी व्यक्ति की। तो अब क्या बोलेंगे? तो उन्होंने राधा रानी को तुलसी को देखने स्पर्श करने स्मरण करने कीर्ति बखान करने नतमस्तक होने प्रार्थना करने उनका पौधा लगाने पूजा करने की सलाह दी। कितना चीज करो आप तुलसी का, देखिए फिर से सुनिए, देखना स्पर्श करना स्मरण करना कीर्ति बखान करना नतमस्तक होना उनकी प्रार्थना करना पौधा लगाना और पूजा करना। कितनी देर बात बनी बताइए सर, इसलिए आरती करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, छू लोगे फसल स्नान भी कर लोगे, पूजा भी हो जाएगी और चिंतन भी हो जाएगा प्रार्थना भी हो जाएगी सब हो जाएगा। तो चंद्र भावा ने विश्वास दिलाया ऐसा करने से तुलसी राधा रानी की इच्छा क्या करेंगी, क्या करेंगी, पूरी करेंगी। क्या हो गया आप बता दे, मुश्किल हो रहा है किसी को अगर पैर में दर्द हो रहा है तो ऊपर बैठ सकता है। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से हजारों लोगों के पुण्यों का फल मिलेगा। चंद्रभामा ने आगे कहा, जो तुलसी का पौधा लगाता है वह अपने परिवार को जन्म मृत्यु से मुक्त कराता है। हम सोचते हैं कि परिवार को अच्छा घर दे देंगे, उनको एसी लगा के लगा देंगे, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर उनको आप तुलसी जी की पूजा में लगा देते हो तो परिवार हर तरह से सुखी हो जाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। और देखिए आगे, जितनी भी शाखा तुलसी में है शाखाएं उप शाखाएं बीज जितने बीज है उसमें फूल पत्ते तुलसी के पौधे पर होते हैं, जिनकी व्यक्ति सेवा करता है उसकी उतनी ही पीढ़ी और उसके परिवार के आगे की पीढ़ी भी हजारों परिवार तक कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में चले जाते हैं। भैया भारत में तो यही सुना है उसकी पीढ़ियां करते हैं, यहाँ तो जितने पत्ते जितने बीज जितने उस शाखाएं जितनी शाखाएं उतनी पीढ़ियां तो उससे भी कई गुना हो गया। सोचने की बात हमारे स्वतंत्र के ऊपर शाखा उपशाखा बीज फूल पत्ते तुलसी के पौधे पर जितने होते हैं व्यक्ति जिनकी सेवा कर रहा है उसकी उतनी ही पीढ़ियां कर जाती है आगे की हजारों कल्प तक। जब कोई प्यार से श्री कृष्ण को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे संसार के सारे पत्र पुष्पों को भेंट करने का फल मिल जाता है। कौन से पत्र पुष्प? बिंदु सरोवर मान सरोवर में जो कमल खिलते हैं एक करोड़ कमल वहां से, पहले तो मान सरोवर में जा ही नहीं पाओगे तन से मर जाओगे, मान लिया चले गए तो अमेरिका चले गए ठीक है, सीढ़ी से उतर करके जो सौ दो सौ कमल ले आए, एक करोड़ कमल भगवान को चढ़ाओ भगवान उतने खुश नहीं होंगे मान सरोवर के कमल से जितना एक पत्ता तुलसी से। और आगे क्या बोलोगे, सारे संसार के फल मतलब ये पौधे और पुष्प यूजलेस है भगवान को एक तुलसी के आगे। जो भगवान श्री कृष्ण की तुलसी के साथ पूजा करता है उसे पास स्पर्श भी नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे कि कमल की पत्ती को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, यमराज जी के दूध उसके घर में कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है, बता रखा है उसको सूखी तुलसी उसके लकड़ी के तक डाल दो तो विष्णु लोक को जाता है, कितना ही पापी क्यों हो यमराज जी के दूध उसको ले नहीं जा सकते। बोले भैया पापी तो था लेकिन क्या करें, तुलसी बीच में पड़ गई, तो भूल खिला दी भैया, दो खरब रुपये मुँह में डाल दिए, दो खरब, अब क्या करेंगे, बिकी जाएगा, अब दो खरब तो कोई बात नहीं, नौकरी से अगर निकाल भी दिया जाऊंगा तो चलेगा। समझे, इतनी बड़ी भूल तेरी भाई तुलसी महारानी बने, इतनी बड़ी भूल तो भैया महापापी भी नहीं रहा, छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी याद रखना ऐसे दोनों बंधुओं पर तुलसी के सूखी लकड़ी रख करके जलाना चाहिए। बहुत ये पद्म पुराण में इसका उल्लेख है, सीधे मुक्ति मिलेगी, सीधे कृष्ण भक्ति मिलेगी। आगे जाते हैं, यमराज जी के दूध उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जिस घर के मध्य में तुलसी का पौधा हो, बीच में पहले लगाते भी थे तुलसी का आंगन, अगर कोई तुलसी का पौधा लगाए, उसकी रक्षा करे, उसे पानी दे, उसे देखे, स्पर्श करे, तुलसी उसके सारे पापों को धोती और शरीर से मन से शब्द से किया है उसे जला देती है। जिस पुष्कर की पवित्र झील, गंगा की पवित्र नदी और विष्णु की मूर्ति सिर्फ एक तुलसी के पत्ते पर होती है, अगर कोई तुलसी की सेवा करे तो कृष्ण उसके सेवक हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्तों में लक्ष्मी जी निवास करती है, छाया में देव निवास करते हैं, तुलसी की छाया में, इसलिए छाया को भी हम लोग लांघते नहीं है, छाया होगी तो फिर थोड़ा दूर जाती, बैठते भी नहीं है, क्योंकि इतना गुरुतम है ये तुलसी, तो बिना सुने इतना रिस्पेक्ट आएगी तुलसी के, बताओ, सुनना है, सुनना है। तो आगे बोलते हैं इस प्रकार से तुलसी की जो है जो सेवा करता है भगवान की सेवक बन जाते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गर्व मुनि के निर्देशानुसार श्रीमती राधा ने तुलसी देवी की सेवा करने की प्रतिज्ञा की, पहले महिमा सुनी फिर प्रतिज्ञा। याद रखना, कोई भी सेवा करनी है सबसे पहले सेवा कैसे की जाए उसको सुनो, फिर सेवा करना, बड़े प्रसाद बांटना है, बड़े सीखो फिर बांटना, बोले प्रवचन देना है बोले पहले सुनो फिर देना, बोले पूजा करनी बोले पहले सुनो पूजा कैसे की जाए फिर करना, पहले सुनना है हर चीज में, श्रवण पहली चीज है। तो राधा रानी ने पहले सुना, फिर प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत सा धन दान में दिया, आकाश से देवताओं ने अपने नगाड़े बुझाए, अप्सराओं ने नाचना शुरू कर दिया, देवताओं ने तुलसी के मंदिर में फूलों की वर्षा की, चार भुजाओं वाली तुलसी देवी केशव की क्रिया में प्रकट हुई और उनकी कमल की तरह आंखें थी, एक सोने का मुकुट चमकदार कुंदन पहने हुए स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थी। जब वह रथ धरती पर उतरा तुलसी जो कि बैजंती की माला पहने हुई थी, जिनकी सड़कों जैसी चोटी पीले रंग के फूलों से ढकी थी, उन्होंने राधा रानी को चुंबन किया। आपको पता है यहाँ पर तुलसी सबके रूप में है, ये तुलसी के बाल नहीं है, वहां ओरिजिनल रूप में है तुलसी सखी के रूप में, जो निरंतर भगवान की सेवा कर रही है, और तुलसी जी राधा रानी का विस्तार भी है। तो राधा रानी को चुंबन किया, तुलसी ने राधा रानी से कहा, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारी भक्ति सार्थक रूप से जीती जा चुकी है, और हे प्यारी तुमने अपनी प्रतिज्ञा को अच्छे से साधारण व्यक्ति की भांति पूरा किया है, अतः तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति होगी, जिससे तुम्हारे दिल इन चाहते ना तुम, तुम्हारे दिल तुम्हारे दिमाग तुम्हारी इंद्रियों में जाओ कृष्ण ही कृष्ण बसे रहेंगे, और भगवान कृष्ण तुम पर दया करेंगे, तुम कितनी भाग्यशाली हो। राधा रानी नतमस्तक हुई और प्रार्थना की, क्या मैं भगवान कृष्ण के चरण में भक्ति पा सकती हूँ, तुलसी ने उत्तर दिया, हाँ तुम पा सकती हो, और फिर ऐसा कहकर तुलसी और श्रद्धा में रही। जब राजा भानु की पुत्री राधा दिल से खुश होकर घर चली गई, जो कोई भी राधा रानी की इस कथा को सुनता है उसे ऐश्वर्य प्रसन्नता भाग्य और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी कृष्ण का शाश्वत प्रेम प्राप्त हो जाता है। तुलसी महारानी की किसी का कोई प्रश्न है, ये तो फिर आरती खड़े होकर आरती करते हैं। तीन लाख पत्ते किसी की भगवान धाम जाएगा ही जाएगा, तीन लाख अगर कोई तुलसी के दल भगवान को चढ़ा देगा तो इस महीने भगवान धाम जाएगा ही जाएगा।
अब पता चला ऐसा नहीं कि सारे सप्तम द्वार तुलसी को खोखला कर दे, इतने कमजोर मत बनो, मेहनत करके भगवान का नाम लेके प्रेम प्राप्त करके सत्संग तुम कैसे जाना। और अच्छा भाव है, ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है तो कृपा करके जो लोग माला नहीं कर रहे हैं आज से माला शुरू करें, क्योंकि कलिए में धर्म बने, कोई कहे मैं धार्मिक हूँ तो इसका मतलब है तो आप करता इनको बोलेंगे। अरे पसंद है आपको, भाग्यशाली मानना चाहिए, किसी से बजवाया जाता है ये भाग्य है, भगवान की सेवा मिल रही है आपको, ये बजाना आता है तो इससे सेवा, इससे प्रसन्न कर दो भगवान को, खुद हो जाएंगे। ये नहीं कि कब बजा छूटे भाई कोई दूसरा बजा देता, बड़ा अच्छा हो जाता, तो हम क्या करेंगे, फिर माया खींचे लगाना बजाना शुरू करेंगे। सब लोग खड़े होंगे, कुछ लोग आरती कीजिए, तुलसी महारानी है तो यहाँ रख दीजिए सामने, रख मतलब रख के पूजा कीजिए। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पादम यही अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पादम राधा कृष्ण सेवा पादम यही अभिलाषी,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 H Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare